ಮನ್ನೇವೆ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಶೇಷತಂತಮೇತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ. इसका वर्णन अगले श्लोक में आएगा, तीसरे श्लोक. पहले श्लोक में इसका वर्णन, दूसरे श्लोक में इसका वर्णन और तीसरे श्लोक में इसका वर्णन. इस समय हम यहां अपना ध्यान केंद्रित करें और इसको समझने का प्रयास करें कि ऋषि क्या कह रहे हैं. कहते हैं कुर्वन देवे कर्माणि, कुर्वन माने करते हुए, इस माने के शरीर में यहां पर जब संबंध हमें प्राप्त हुआ है तो यहां पर हम कर्म करते हुए, कर्माणि पूर्वन कर्मों को करते हुए ही जी विशेष जीने की हम इच्छा करें. शतम समा 100 वर्ष तक हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें. एवं त्वयि नान्यथा अतो अस्ति, बस यही एक मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग है, यही करना ही पड़ेगा. सबको व्यक्ति को यही करना पड़ेगा और जीवन जीने का और अपना कल्याण करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं. न कर्म लिप्यते नरे, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता रहता है तो वो आखिरकार कर्म के बंधन से छूट जाता है, वो कर्म में लिप्त नहीं होता. ये श्लोक में आचार्यों का कथन इस प्रकार से है कि ये श्लोक निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देता है. और गीता शास्त्र में है जो तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है, वो सब इसी श्लोक का विस्तार है, व्याख्या है. ये श्लोक केवल कह दिया जाए तो व्यक्ति को निष्काम कर्म पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा. भगवान ने गीता में इसी श्लोक का विस्तार किया और बहुत सी बातें निष्काम कर्म योग की स्पष्ट करके समझा दें. अगर हम इस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं तो गीता के दूसरे अध्याय के 55वां श्लोक जो है वो कर्मणे वाधिकारस्ते, वहां से अध्ययन करना प्रारंभ करें. 5 श्लोकों का अध्ययन दूसरे अध्याय में करें, उसके बाद फिर तीसरा अध्याय को देखें, तीसरे अध्याय आज से अंत तक निष्काम कर्मयोग का ही है, फिर चौथे अध्याय को भी देखें, तो इसकी इस श्लोक की पूरी व्याख्या मिल जाएगी. अब यहाँ उन सबको कि गीता में जितने भी इतने श्लोकों में 70 या 100 श्लोकों में जिस कर्मयोग का वर्णन किया गया है उसका अब हम यहाँ एक साथ वर्णन करने लगे, विस्तार करने लगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए संक्षेप में ही उसको समझने का प्रयास करें. ये श्लोक किस प्रकार से निष्काम कर्मयोग की बात कहता है. अंतिम पंक्ति यह है कि न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता. इस प्रकार से कर्म करते हुए जीवन जीने से व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता, ये उसका फल है. तो कर्म में व्यक्ति लिप्त कब नहीं होता, जब निष्काम भाव से कर्म करता है. निष्काम भाव से कर्म के भी 2 भाग करने मुख्य रूप से. एक भाग तो ये कि कर्म करते हुए कर्म तो करें लेकिन कर्म के फल का दुराग्रह न रखें, उसमें आसक्ति न रखें, एक तो ये. और दूसरा ये कि कर्म करते समय में कर्ता भाव भी न रखें कि कर्म करने वाला मैं हूं, ये भी न मैं कर्म करने वाला हूं और न मैं कर्म के फल का भोगता हूं. ये दोनों ही बातें धीरे धीरे समझ करके जो व्यक्ति के चित्र में ये बात आ जाती है वो फिर जो कर्म करता है ऐसा व्यक्ति वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता. कर्म के बंधन में न पड़ने का अर्थ क्या है कि कर्म करने से व्यक्ति की नई वासनाएं बनती हैं. हम ऐसे बोल सकते हैं कि कर्म करने से व्यक्ति का कुछ आदतें पड़ती हैं, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही आदत बनती जाती है. अब जैसी व्यक्ति की आदत बनती है वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है. आदत जो है वो पढ़ते पढ़ते व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव और गहन हो जाते हैं, जब संस्कार और गहरे बनते हैं तो स्वभाव ही व्यक्ति की प्रकृति बन जाता है, प्रकृति। और जब व्यक्ति की जो वो प्रकृति उसकी व्यक्ति की बन जाती है तो वो प्रकृति ही उसका वो काम शरीर है। प्रकृति की जड़ता इस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होती जाती है। लेकिन ये सब प्रक्रिया कब चलती है? जब व्यक्ति कर्म में कर्म के फल में आसक्ति रखता है और कर्ता भाव रखता है, तब उसके अंदर इस प्रकार का परिणाम या प्रक्रिया उसके अंदर ऐसी चलती है। यदि कर्म के फल का आग्रह न रखे, कर्ता भाव भी न रखे, तो उसके कर्म होते रहेंगे, कर्म होते दिखाई देंगे, लेकिन होते होने कर्म होने के साथ ही साथ वो कर्म समाप्त होते जाएंगे, उन कर्मों की फिर नई वासना नहीं बनेगी। कर्मों की नई वासना न बनने के माने क्या है कि कर्म के बंधन में न पड़ना। नई वासना बनने के माने हमारे कर्म बंधन बढ़ते जाते हैं, हम उनके बंधन में पड़ते जाते हैं। ये वासना हमारे लिए बंधन किस प्रकार से है? ये वासना ही सत्वगुणी रजोगुणी तीन प्रकार की होकर के तमोगुणी हुई तो वो तमोगुणी प्रभाव मन बुद्धि पर डालती है, रजोगुणी हुई तो रजोगुणी प्रभाव डालती है, सत्वगुणी हुई तो सत्वगुणी प्रभाव डालती है। इस प्रकार से उसके प्रभाव से बुद्धि वैसे ही सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी बनती है और फिर मन में उसी प्रकार की स्वतः कामनाएं उत्पन्न होती है और उन कामनाओं से प्रेरित होकर के व्यक्ति को बर्बस होकर के कर्म करना पड़ता है और उन बर्बस कर्म करके फिर व्यक्ति उनके कर्मों का फल भी भोगता है, सुखी दुखी भी होता है। यही कर्म का बंधन है। ये जो व्यक्ति के ऊपर दबाव पड़ता रहता है इस प्रकार से वासनाओं का, वही उसका बंधन। एक उदाहरण के द्वारा इस बंधन को समझने का प्रयास करें कि जैसे कोई व्यक्ति रात्रि में सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि हम रात्रि में सो रहे हैं, उनको स्वप्न न दिखाई दे, कहे आज हम सो रहे हैं, सो करके सोएंगे लेकिन स्वप्न नहीं देखते, और स्वप्न में उसको दुख दुख भोगना भी पड़ेगा, दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा। तो जैसे स्वप्न में व्यक्ति को सुख दुख बर्बस होकर के भोगना पड़ता है, तो स्वप्न में सुख दुख की बर्बसता क्यों है, कहां जा रही है, किस कारण से? तो ये सब व्यक्ति को विचार करना पड़ता है। जब ध्यान दे तो उसे पता लगेगा उसकी अपनी वासना, जैसी व्यक्ति की वासना वैसे ही उसको स्वप्न दिखाई देगा और जैसा स्वप्न वैसे सुख दुख का अनुभव भी होगा। ये कर्म का बंधन है, कर्म के बंधन के कारण से ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ये भी जैसे स्वप्न में सुख दुख का अनुभव वासना के कारण करना पड़ता है, ऐसी जागृत अवस्था जब सुख दुख हालांकि लगता कारण लगता है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं उसके कारण सुख दुख आते हैं, लेकिन दरअसल में बात यह है कि जैसी हमारी वासना उसी प्रकार से हम उन परिस्थितियों को इंटरप्रेट करते हैं और सुखी भी हो लेते हैं तो दुखी भी हो लेते हैं। उसी परिस्थिति को कोई व्यक्ति अपना अनुकूल मान करके सुखी हो लेता है और उसी परिस्थिति को कोई प्रतिकूल मान करके दुखी हो। अधिकांश संसार में तो इस प्रकार का होता है कि यदि किसी व्यक्ति के संस्कार वासनाएं प्रारब्ध इस प्रकार का है जिसे उसे दुख भोगना है तो उसे जीवन में दुखद घटनाएं अनुभव में आती है। वो देखता है कि उसका बना बनाया परिवार, पत्नी, पुत्र और धन संपत्ति सब उसे प्राप्त है, सुख का अनुभव कर रहा था, एक एक करके वो नष्ट होने लगे। पुत्र भी एक्सीडेंट में मर गए, पत्नी भी बीमार भी मर गई, उसका जो व्यापार धंधा था वो व्यापार धंधा भी नष्ट हो गया, न पैसा रहा न परिवार रहा। अब वो व्यक्ति क्या इंटरप्रेट करेगा? देखो सब दुखी की बात, पुत्रों का मर जाना भी दुख, पत्नी का मर जाना भी दुख, धन का नाश हो जाना भी दुख, उन सबको दुख दुख में करके अनुभव करके अपने आप को दुखी अनुभव करेगा। एक व्यक्ति का इसी प्रकार से घटना घटी और वो सब का सब उसका विनाश हो गया, देखते देखते दो चार साल में सब विनष्ट हो गया और दुख दुख नित्य दुख बढ़ते गए, अंत में ब्रेकडाउन ऐसा मेंटल हुआ उसका कि बस वो पागल हो गया। एक स्थिति ऐसी इस प्रकार से आ जाती है। कहीं कहीं हम देखते हैं, कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा भी देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति ऐसी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। घटनाएं वही वो दूसरे प्रकार से इंटरप्रेट करता है। भागवत में देखते हैं नारद मुनि अपने पूर्वजों की कथा सुनाते हैं, कहते एक बार में दासी का पुत्र था और पिता की बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई। माँ हमारा पालन करती थी, वो घर घर में अपने काम करती थी और हमारा पालन भी करती रहती। लेकिन हमारे गांव में एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा लोग आकर के गांव के बाहर एक बाग में ठहरे, तो वहां पर उनकी सेवा करने के लिए हमको लगा दिया गया। हम उन महात्माओं की सेवा दो चार महीने वहां करते रहे और उनका उपदेश भी सुनते रहे, उनकी सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे उसका परिणाम ये हुआ कि हमें बाह्य जगत की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती थी उनके ऊपर व्यक्ति को जो सुख और दुख हुआ करते थे उससे हमारी छुटकारा हो गया, मुक्ति हो गई। अनुकूल स्थिति हो तो भी हमें सुख नहीं, प्रतिकूल स्थिति हो तो भी हमें दुख नहीं। और उसके बाद कुछ काल के बाद ऐसा हुआ कि जो माँ थी वो एक बार दूध दूहने गाय के गई गौशाला में, वहां कहीं सर्प था, उस सर्प ने काट लिया और माँ मर गई। अब कोई नहीं रह गया न माँ न बाप, अब वो पुत्र माँ का अकेला रह गया। तो नारद जी कहते हैं मैंने तब क्या किया कि अपनी माँ के शरीर को लेकर के जो हमारे छप्पर था और झोपड़ी थी, घास फूस था, लकड़ी थी, सब उसको इकट्ठा किया तोड़ताड़ करके और उसी ने माँ का शरीर रखा, आग लगा दी। तो उससे क्या हुआ, माँ का दाह संस्कार हो गया और मकान भी समाप्त हो गया। अब अपने पास क्या रहा, नारद जी कहते हैं बस अब हम मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, मुक्ति का आनंद प्राप्त। बस उसके बाद जैसे महात्मा लोग घूमते थे बस उसी प्रकार से मुक्त हुए, कहीं से मन वे अपने आनंद का वर्णन करते हैं कि देखो मुझे क्या मुक्ति का आनंद प्राप्त। कहने का तात्पर्य ये है कि घटना एक घटना घटती है तो व्यक्ति कैसे उसको इंटरप्रेट करता है ये इंटरप्रिटेशन उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है और बुद्धि भी वासनाओं के अनुसार इंटरप्रेट करती है। सत्वगुणी बुद्धि व्यक्ति होगी नारद की तरह से इंटरप्रेट करेगी, रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि होगी तो संसार में जैसे अभी एक घटना बताई वो पागल हो गया व्यक्ति, उसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से ऊपर पागल हो जाए। ये हमारे समस्त शास्त्र जीवन विज्ञान है, ये घटनाएं किस प्रकार से घटती हैं, हमारे भीतर क्या क्या होता रहता है उन्हीं का सत्ता निरूपण करते हैं, वर्णन करते हैं। तो ये हमारे कर्म ही जो है वो व्यक्ति की वासनाएं बनाते हैं और वासना ही हमारे बंधन बनते हैं और जैसे वासनाएं होती हैं उसी प्रकार से हम उन्हीं के बंधन में रह करके जीवन जीते हैं। बहुत बार देखो किसी व्यक्ति से कहें कि देखो अब के समय है आप अवकाश प्राप्त कर लिए हैं और आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी भी नहीं, अब आपके न पुत्रों की जिम्मेवारी है न पुत्रियों की जिम्मेवारी है न आपके और कोई अवकाश प्राप्त हो गए, कोई नौकरी चाहते भी आपकी नहीं है। इस समय आपको समाज सेवा के कार्य में, समाज सेवा ही भगवान की सेवा है, इसलिए भगवान की सेवा के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा और समाज की सेवा करो और अपने घर में चिपके हुए कमरे में मत बैठे, निकलो बात भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा के माने यही नहीं कि मंदिर में गए वापसी कर जाए, पूरी भगवान की सेवा। संसार में जो जितना भी समाज है, जितने भी प्राणी है, सब भगवान के रूप हैं, उनकी सेवा के लिए अब निकलो। तो व्यक्ति बहुत बार सोचता है कि कैसे निकले कहा जाए, अभी तो जिम्मेवारी हमारी है, वैसे तो कहता कोई जिम्मेवारी नहीं, पर जब ये कहें कि निकलो चलो भगवान की सेवा के लिए घर छोड़ तो कहते नहीं अभी हमारी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है, हमें सब्जी तो अपनी बुलानी पड़ती है और बच्चे को स्कूल तक भेजना ले आना काम तो हमारे ही नाती उसे कौन ले, उसे मैं ही ले जाता हूँ, स्कूल छोड़ता हूँ, स्कूल से लेकर के आता हूँ, ऐसी सब्जी भी मुझे लानी पड़ती है। मैं चला जाऊंगा भगवान की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा के लिए कौन करेगा। अब देखो अब इस प्रकार की बुद्धि क्यों आती है, इसका और कोई कारण नहीं, केवल व्यक्ति की अपनी वासना है, उस वासना के कारण परिवार में अटैचमेंट आ सकती और आसक्ति के साथ उसने अपना कर्तव्य मान लिया और कर्तव्य मान करके एक बंधन में बन लिया। स्वयं विचार करके आप देखें किस प्रकार से ऐसा क्यों हो रहा है। ये दूसरे इस प्रकार से सोचता है कि अगर मैं मान लो घर छोड़ करके चला भी जाता हूं तो कहां जाऊं, क्या समाज सेवा करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे खाने को कहां मिलेगा, रहने को कहां मिलेगा, इस प्रकार से माने फिर उसके अपने शरीर की आसक्ति अटैचमेंट शरीर का अपने खाने का वो फिर ये भी उसका प्रारब्ध ही है। जिस प्रकार शरीर में तादाद किए हुए भगवान की सेवा करने के लिए उसे छुट्टी नहीं देती। भगवान की सेवा करना तो सब जानते हैं कि सब शास्त्र में बार बार कहा गया है कि हमारा जीवन जो है भगवान सेवा में लगना चाहिए। देव हितम यदायु, हमारी जो शेष जीवन है वो देव हित माने ईश्वर के हित में उसकी सेवा हमारा लगना चाहिए। लेकिन जब करने चलता है व्यक्ति तो उसको जो उसमें बाधाएं पड़ती है कर नहीं पा रहा है वो उसका कर्म बंधन। कर्म बंधन ये सब है जिसकी समस्याएं जिनकी चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये कर्म बंधन कैसे छूटे, ऐसा नहीं कि किसी का आज तक छूटा ही नहीं है और छूट सकता ही नहीं है। ऐसा होता तो कोई कर्म बंधन छूटने की बात शास्त्र कभी करते नहीं। लोगों की ये कर्म बंधन छूटे और छूट सकते हैं। मनुष्यों ने जो कुछ किया है पहले आज भी उसे मनुष्य कर सकता है। ये नियम है, सिद्धांत। ये प्राचीन काल के जो ऋषियों ने कुछ किया है तो वो भी मनुष्य ही थे। ऋषि के माने ये नहीं कि मनुष्य जाति से इधर हट करके कोई भिन्न प्रकार का एक प्राणी था वो ऐसा कर लेता था, मनुष्य कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। वो ऋषि जो थे वो भी मनुष्य ही थे, हाथ पैर इसी प्रकार शरीर धारण किए, मन बुद्धि यही वो सबको लेकर के करने वाले थे। लेकिन उन्होंने संकल्प किया, प्रयास किया, तपस्या की, साधना किए और उसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में परिवर्तन आया और वो कर्म के बंधन से छूट। यदि वो किसी साधना के द्वारा कर्म बंधन से छूट सके हैं, छूट गए हैं, तो आज भी मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई व्यक्ति अपने कर्म बंधन में इतना बंधा होता है कि तमोगुण तक के इसमें पहुंच गया होता है तो वो फिर व्यक्ति इस प्रकार से बोलने लगता है कि वो बात समय की बात दूसरी है, तब सतयुग था, आज कलयुग। अब कलयुग के समय में व्यक्ति कर्म के बंधन से नहीं छूट, इसलिए हम भी इसके लिए कोशिश करते नहीं, बेकार कोशिश करना है। कलयुग में तो छूटे नहीं। अब ऐसा इंटरप्रिटेशन क्यों किया, देखो सारा इंटरप्रिटेशन है व्यक्ति का, अपने आप अपना अर्थ लगाना है। अब तो कलयुग का उसके बहाना मिल गया और उसे अपने कर दिया इस प्रकार से, कलयुग में कोई कर्म के बंधन से नहीं छूट सकता। फिर क्या होगा कलयुग के समय में, कि कलयुग के समय में आदर्श जीवन यही है कि भ्रष्टाचार दुराचार में नास्तिक डूबे रहो और सब लोगों के साथ अपने जो है साम्य भाव बनाए रखो, मैंने सबके साथ तालमेल बनाए रखो। सब भ्रष्टाचारी दुराचारी अपने आप भी उन्हीं के साथ बने रहो और उसी की धारा में बहते रहो, यही सबसे अच्छा जीवन का रास्ता है। ये अब कहां से आ गया, बुद्धि ने क्यों ऐसा कहा? आप देखेंगे कहने का कारण ये कि वो पहले ही संस्कार इस प्रकार के लिए करके आया है, तमोगुणी रजोगुणी संस्कार है उनकी वासना है, वही व्यक्ति से ऐसा कहा रही है और उसी प्रकार उस तरफ चलता है। इसलिए कहने का तात्पर्य कि सब व्यक्ति के अपने पूर्व कर्मों का फल है जिनके कारण से आज हमारा वर्तमान का प्रारब्ध या वासनाएं हमारी ऐसी है जो हमें एक दिशा में गति के लिए चली जाती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन इनसे बचने का भी उपाय कर्म ही करना ही इसका उपाय। जिस प्रकार से हमने पूर्व काल में कभी कर्मों के द्वारा ऐसी वासनाएं बनाई जो कि इस समय हमारी उपलब्ध वासनाएं हैं, जैसा स्वभाव, जैसा संस्कार, जैसी मान्यता, हमारी धारणाएं इस समय वर्तमान की है, क्यों है? हमारी पूर्व कर्मानुसार प्राप्त हुई है। हम चाहें कि इससे उत्तम कोटि की, जैसा शास्त्र के ऋषि लोगों की विचार है, चिंतन है, जैसा उनका ज्ञान है वैसा हमारा भी बने, तो हमें सबसे पहला काम यही है कि अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा। कर्म की दिशा मुड़नी पड़ेगी। कौन से कर्म करें, किस प्रकार के कर्म करें, कैसे कर्म करें, ये सब विचार करना पड़ेगा। इनमें कर्म के द्वारा ही इनमें परिवर्तन भी आया। अब यही प्रश्न आ जाता है प्रारब्ध का और पुरुषार्थ का। बहुत बार लोगों ने जो कभी गंभीरता से उसके ऊपर विचार नहीं किया या कोई ऐसी पुस्तक ग्रंथ नहीं मिला जिसमें कि स्पष्टीकरण का हुआ हो, तो नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न करते हैं। वो कहेंगे हर व्यक्ति अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, तो प्रारब्ध उसका अपना जैसा है, उसी प्रकार से उसको कर्म बंधन ही है, तो बंधन में उसे करना ही पड़ेगा। अब उसको इतनी छूट कहाँ है जो कोई नया पुरुषार्थ करे और अपने आप को बदलने की कोशिश करे, भला कैसे कर सकता है, ऐसे सोचता है प्रश्न ये करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, कोई जीवन मनुष्य शरीर में ही जीवन नहीं है। गाय बैल बकरी पशु पक्षी कीट पतंग ये पेड़ पौधे इन सब में भी जीवन है, और मनुष्य से हट करके दूसरी ओर गंधर्व हैं, पितृ भी हैं, देवता भी हैं, आजानज भी हैं, ये भी अनेक प्रकार के प्राणी हैं। जितने भी प्राणी हैं, कुछ उच्च स्तर के प्राणी कहलाते हैं, कुछ निम्न स्तर के प्राणी कहलाते हैं। जिन जीवन में अधिक दुख भोगना पड़ता है वो निम्न स्तर का जीवन है, जिस जीवन में अधिक सुखानुभूति प्राप्त होती है वो उच्च स्तर के जीवन है। इस प्रकार से मनुष्य से कुछ उच्च स्तर के प्राणी हैं, मनुष्य से कुछ इतर निम्न स्तर के प्राणी हैं। उन सब प्राणियों में तो ऐसा है कि वे निरे अपने प्रारब्ध के हैं और पुरुषार्थ करने के लिए उनके लिए कोई अवसर नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, मनुष्य शरीर में बात करने वाले जो प्राणी है, जो जीव है, वो प्रारब्ध के बंधन में होते हुए भी उसे छूट है प्रारब्ध के बंधन से छूटने की, और उसे पुरुषार्थ के लिए अवसर दिया। मनुष्य निरा अपने कर्म के बंधन में ही नहीं है। जब मनुष्य को ये लगता है कि हमने पूरे जन्म में कैसे अशुभ कर्म किए हैं जिसके कारण कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और न चाहते हुए हमें दुख भोगने पड़ते हैं, क्या हम इन दुखों से और इन कर्म के बंधन छूट नहीं सकते, तो वो अपना निश्चय कर सकता है कि हम छूट सकते हैं। क्या करने से छूट सकते हैं, क्या हम इस प्रकार के कर्म करें जिससे कि अब वासना सत्वगुणी बने, तमोगुणी रजोगुणी ना हो, तो हम कर्म के बंधन से धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो क्या हम सत्वगुणी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि हाँ स्वतंत्र हैं। मनुष्य कर्म करने के लिए अपने प्रारब्ध से भी हट करके मनुष्य को कर्म करने की छूट है, लेकिन पूरी छूट नहीं। एक ओर प्रारब्ध का तनाव भी है और दूसरी तरफ थोड़ी छूट भी है। पूरी छूट भी दी जाए मनुष्य को, और प्रारब्ध यदि व्यक्ति का तमोगुणी हो या रजोगुणी हो और कर्म करने की पूरी छूट दे दी जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा भयंकर भ्रष्टाचारी दुराचारी होगा कि कुछ कहने। तो मन परमात्मा ने मनुष्य जो है अत्यधिक उपद्रव न करने पावे, थोड़ा बहुत करे अपने प्रारब्ध अनुसार, लेकिन आगे चल करके थोड़ी लगाम भी लगी रहे, ये प्रारब्ध का उसके साथ में बंधन, कर्म का बंधन। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सत्वगुणी होता जाता है, वैसे वैसे भगवान इस लग को ढीली करते जाते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति के साथ प्रारब्ध का अधिक बंधन नहीं है और उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए पूरी छूट है, और वो ऐसा पुरुषार्थ भी कर सकता है कि वो वासनाओं की जो एक वज्र की दीवार सामने खड़ी हुई है उसको वो पार करके अपने आत्म तत्व में जो लोकातीत है, त्रिगुणातीत स्थिति है आत्मा की, उस आत्मा को परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। मनुष्य को यहां तक छूट है। इसलिए उदाहरण के रूप में कहते हैं कि जैसे एक गाय है घास के मैदान में खूंटा गाड़ करके एक रस्सी में गाय को बांध दिया जाए, जहाँ गाय बंधी हुई है, गाय देखेगी कि नीचे दूध की बढ़िया घास उगी हुई है, तो गाय जो उस घास को चढ़ने लगेगी, खूंटे की इधर भी चढ़ेगी और घूम करके खूंटे के उधर भी चढ़ेगी, खूंटे की इधर भी चढ़ेगी, खूंटे के उधर भी चढ़ेगी। तो गाय को घास चढ़ने की छूट है, लेकिन उसके बाद जितनी बड़ी रस्सी है उसके आगे जा करके घास चढ़ने जाए तो उसको घास चढ़ने की छूट नहीं है, क्योंकि बंधी है। वही रस्सी जब गाय के बंधी हुई गले में बंधी हुई रस्सी को कोई उसका मालिक उसको दुगना कर दिया, तिगुना कर दिया, चौगुना कर दिया, लंबी रस्सी कर दी और उसी खूंटे में बांध दी, तो अब गाय जो वो दूर तक घेरे में चक्कर काट करके दूर तक घास चढ़ने के लिए हो गई, लेकिन फिर भी बंधी हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन जो है वो हो उस घास के मैदान में गाय का मालिक गाय को बिल्कुल रस्सी छोड़ करके खुला छोड़ दे, गाय चाहे उस कोने में चले, चाहे इस कोने में चले, चाहे इस कोने में चले, चाहे बीच में चले, चाहे खुदे के पास चले, कहीं भी चले, पूरा स्वतंत्र है। तो जैसे गाय के साथ में इस प्रकार से बंधन भी है, छुटकारा भी है, मुक्ति भी है, इसी प्रकार से मनुष्य के साथ में ये छूट है कि मनुष्य कर्म करे, ऐसे करे अथवा वैसे करे अथवा ना करे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्या। मनुष्य में ईश्वर तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्या पूर्ण रूपेण है सब प्रकार से, लेकिन जीव भी कर्म करने न करने और अन्यथा करने में कुछ स्वतंत्र। चाहिए कि हम तो निरे प्राप्त के बंधन में बंधे हुए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। मनुष्य को कर्म करने की छूट है, और मनुष्य को कर्म करने की छूट है इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारे शास्त्र है और आचार्य जो है। अगर मनुष्य कर्म करने के लिए बिल्कुल छूट न होती तो शास्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे कि गाय बैल बकरी जो है ये जानवर जो है अपनी प्रकृति के अनुसार उसी के बंधन में बंध करके उनको करना पड़ता है, वो अन्यथा कुछ कर ही नहीं सकते। बकरी कभी ऐसा नहीं कर सकती सिंह के ऊपर आक्रमण कर दे और सिंह को खा जाए, वो अपने बंधन में है, वो जो पत्तियां जिसे खानी बस वही खाएगी, उसी प्रकार से ही उसकी उतनी प्रकृति में वो बंधी हुई है। इसलिए बकरी के लिए कोई ज्ञान ही नहीं है, उसके लिए कोई शास्त्र भी नहीं है और उसके लिए कोई सरकारी कानून भी नहीं है। दो बकरियां लड़ेंगे और एक बकरी दूसरी बकरी से बकरी का मन सीन तोड़ दे तो क्या इसकी रिपोर्ट थाने में दिखाई जा सकती है? और क्या उसके ऊपर कचहरी में कोर्ट में कोई मुकदमा चल सकता है? मालिक की बात उसे बकरी के ऊपर नहीं हो सकता, मालिक के ऊपर आदमी को जो पता चल जाता है, इसके माने जो है उसके मालिक के ऊपर जो है ये कोर्ट दिखाई जा सकती है और मालिक के ऊपर कोर्ट केस भी चल सकता है। इसके माने मालिक ऐसा भी था कि बकरी को बांध के रखता, लड़ने देता, इसकी उसे स्वतंत्रता ऐसा कर सकता। मालिक की कहते कोर्ट में जाकर के हम क्या करें, हमारा जैसा प्रारब्ध और जैसा हमारा स्वभाव वैसा हम करते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति मनुष्य जो है दूसरे व्यक्ति को लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने में किसी को मार दे और वो मर जाए, और फिर वो जाकर के कोर्ट में जब उसके मुकदमा उसके ऊपर चलेंगे तुमने हम व्यक्ति को मार दिया, तो कहते हम क्या करें, ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमारी प्रकृति है, ये तो हमारा प्रारब्ध है, उसके कारण से हमने ऐसा कर दिया। तो हम जब क्या कहेंगे कि तुम्हारे प्रारब्ध है तो तुम्हारा प्रारब्ध ये भी है कि फांसी पर टको। ये भी तुम्हारा प्रारब्ध। तो प्रारब्ध जो है इस प्रकार से व्यक्ति का जो है मनुष्य के साथ में प्रारब्ध की क्षमता उस प्रकार से नहीं जैसे पशुओं इत्यादि के साथ में मनुष्य को छूट भी है, इसीलिए मनुष्य के ऊपर सरकारी कानून का नियंत्रण भी है और इसीलिए मनुष्य के ऊपर शास्त्रों का भी प्रतिबंध है और शिक्षा की भी व्यवस्था मनुष्य के लिए है। ये शिक्षा की व्यवस्था शास्त्रों की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य कर्म करने में निराबंधन में नहीं है, उसके साथ छूट भी है। इसलिए निरा प्रारब्ध के व्यक्ति के चक्कर में न पड़े और उसको अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मनुष्य के साथ में स्वतंत्रता जो है वो हो, प्रारंभ में व्यक्ति को कर्म करने की अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को अपना विकास करना चाहे और अपने प्रारंभ से अलग करके अपने प्रारंभ को उज्जवल बना करके श्रेष्ठ महान जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करना चाहे तो उस पुरुषार्थ करने में व्यक्ति को पूरी छूट एकदम से प्रारंभ में नहीं दिखाई देगी। ऐसा मान लें कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया और शरीर देकर के मनुष्य शरीर इसीलिए दिया कि उसको हम कुछ छूट दे सकते हैं कि मनुष्य पुरुषार्थ कर लेगा तो उससे फिर वो अपना अपना विकास कर लेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर देकर के हर मनुष्य को अपना कल्याण करने उसने थोड़ी थोड़ी छूट। अब देखो यदि वो मनुष्य है वो जो परमात्मा ने जितनी छूट दी है उतना पुरुषार्थ यदि व्यक्ति करता है तो परमात्मा फिर उसको थोड़ा और छूट देता है और फिर वो और अधिक पुरुषार्थ कर लेता है। यदि वो फिर और पुरुषार्थ करता है तो परमात्मा उसको कर्म करने के लिए और अधिक छूट देता है और उसका फिर वो उतना उसका भी सदुपयोग यदि व्यक्ति कर लेता है तो उसको कर्म करने की छूट मिलती जाती है। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने जो कर्म करने के लिए छूट दी उसका यदि व्यक्ति सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है, मन दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, वो भी कर्म करने की छूट है और उस प्रकार उसने उसका दुरुपयोग किया तो परमात्मा उसके ऊपर लगा देगा प्रतिबंध कि बात इसके आगे आप नहीं कर सकते। कहा कि अब मन शरीर छोड़ करके तुम गाय बैल बकरी इनका शरीर धारण करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन प्रतिबंधों को इस प्रकार से वो अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ अपना विकास धीरे धीरे करता जाता है, उसके अंदर जो है अपने शक्तियों को जागृत करता जाता है, सन्मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, तो जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे परमात्मा उसको कर्म करने की स्वतंत्रता देता जाता है और उच्च कर्म उच्च प्रकार के स्वधर्म का पालन, सामान्य धर्म का पालन और फिर शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, परमात्मा की प्राप्ति, इस ओर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा निरंतर छूट देता जाता है और छूट देता जाता है और बढ़ता जाता है। गुरु नानक देव ने एक दृष्टांत दिया इस बात को समझाने के लिए। ये तो बात शाश्वत सत्य है और सभी संत महात्मा यही कहते हैं, नानक देव यही कहते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया जैसे कि कोई पिता है और उसका एक पुत्र है, वो पुत्र जब बड़ा हुआ युवा हुआ तो अब ये बात आई कि पुत्र भी कुछ न कुछ व्यापार धंधा करे और अपनी जीविका चलावे। तो पिता जो है वो व्यापारी था और उसने अपने व्यापार करते करते परिवार का भी पालन किया था और उसने कुछ अपनी संपत्ति भी अपनी इकट्ठी कर ली थी और उसके पास थे 1-2 लाख रुपए कुछ उसके पास थे, बचा करके उसने रखे थे। तो पुत्र जब युवा हुआ बड़ा हुआ तब उसको उसमें से निकाल करके 1/4 पैसा अपने पास में जमा था, वो उसने अपने पुत्र को दिया। कहा कि देखो जिस प्रकार व्यापार करते हैं इसी प्रकार से तुम भी करो। तो पुत्र ने वो पैसा दिया तो लेकिन कहा ये तो बहुत थोड़ा है, किसी व्यापार कितना होगा। तो पिता ने कहा कि ये तो पैसा हमने जितना पहले ढंग दिया था उतना ही और देते, अब अगले साल व्यापार करो और देखते हैं कि तुम कितना व्यापार करते हो, कैसे सफल होते हैं। तो उसने फिर दूसरे साल फिर व्यापार किया, डबल पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, व्यापार बड़ा हो गया और करने में भी उसको उत्साह बढ़ गया, बड़ी लगन के साथ में परिश्रम करके वो करने लगा। अब अगले साल जो उसको प्राप्त हुआ तो 10% नहीं 15% हुआ और जब पिता को दिखाया कि देखो इस बार हमारा प्रॉफिट 15% है, उन्होंने कहा कि 15% जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसी में लगा दो, पिछली बार 10% हुआ तो वो भी उसी में लगा दो और हमारे पास जो शेष बचा हुआ आधा धन और रह गया है वो भी तुम ले जाओ, अब तुम तो पूरा व्यापार करो और उसी से अपनी जीविका भी चलाओ, अपना परिवार भी चलाओ, बस तो सब। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को ये देख देख करके धन देता है कि सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग, इसी प्रकार से परम परमात्मा सबका पिता है, समस्त जगत का जो पिता है आदि पिता है, जिसके लिए सब संतान है, वो परमात्मा के भीतर बैठे बैठे सबके हृदय में सबको कर्म करने की और अपना हित कल्याण करने के लिए प्रसन्नता देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, सदबुद्धि देता है। जो व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है उसका धन सदुपयोग करेगा, उस बुद्धि का सदुपयोग करेगा, परमात्मा उसको कर और देगा। जब उसका भी प्रयोग करेगा तो परमात्मा और देगा। ये किसी भी संत महात्मा से आप पूछ लो और किसी भी शास्त्र को देख लो, ये अटल सत्य है, संशय ग्रंथ मात्र ही बात है। आज भले ही लग रहा हो कि हमसे कुछ सत्य नहीं बनेगा और हम क्या करें, क्या नहीं कर सकते हैं, हम तो सब बंधन में, परिवार का भी बंधन है, जाता का भी बंधन है, और मकराधिकारी भी शरीर भी साथ नहीं देता, हजार प्रकार के बंधन दिखाई देते हैं। लेकिन व्यक्ति जब अपनी शक्ति का सदुपयोग करना सीखेगा तो उसको देखो कि परमात्मा की तरफ से निश्चय रूप से उसको अधिक शक्ति प्राप्त होगी, अधिक बुद्धि प्राप्त होगी, अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और वही प्राप्त होते होते एक दिन जीव परमात्म भाव को प्राप्त करके नित्य मुक्त स्वरूप हो जाता है, सारे बंधन उसके ऊपर हट गए, तभी तो मुक्त होता है। मुक्त के माने क्या, कोई बंधन नहीं, सब तरह से स्वतंत्र, वो स्वतंत्र व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सब प्रकार से स्वतंत्र प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अब फिर कोई लोग के लिए अहितकारी कार्य हो, अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो या अपने लिए हानिकारक हो, उससे हो ही नहीं सकता। जो मुक्त पुरुष है उसके द्वारा सदा ही वही कर्म होंगे जो अपने लिए कल्याणकारी है, लोग के लिए कल्याणकारी है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कल्याणकारी है। अकल्याणकारी कार्य मुक्त पुरुष के द्वारा हो ही नहीं सकता, और मुक्त ही तब होगा जब इस प्रकार की कार्य हो। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति कोई पाप कर्म कर सकता है, अहितकारी कार्य कर सकता है, समाज के लिए दुखदायी कार्य कर सकता है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को कैसे मुक्त कर दिया जाए। इसलिए व्यवस्था जब वो अपने स्थान पर बड़े ही सुचारू रूप से चल रही है, वो चलाने वाला परमात्मा है, सारी व्यवस्था को चला रहा है। इस बात का ध्यान में रखकर के व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अपने जीवन में अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, सामान्य धर्म का पालन करते हुए अपना आत्म विकास करे, सन्मार्ग पर चले, लोक कल्याणकारी कार्य करे। इसकी शिक्षा इसमें ये कहते कुर्वन ये कर्माणि, व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए, कर्म करते हुए जीवन जिए। 100 वर्ष का जीवन जीने की इच्छा करें कि 100 वर्ष तक हमारा जीवन चले, मनुष्य के जीवन की एक आयु ऋषियों ने खोजी देखी, तो 100 वर्ष उसकी व्यक्ति की आयु में सामान्य रूप से, कभी कभी 100 से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो व्यक्ति के अपने अपने कर्मानुसार, लेकिन 100 वर्ष उसकी एवरेज जो उसकी आयु है 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष तक उसे जीवन जीने की कामना करनी चाहिए कि 100 वर्ष तक अगर हमारा जीवन चले तो 100 वर्ष तक हम साधना करें। जब तक 100 वर्ष का जीवन, 100 वर्ष जीवन जीना अपने आप में कोई उपयोगी नहीं है, 100 वर्ष का जीवन हो, 100 वर्ष भी कर्म होते रहे और उस कर्म के द्वारा हमारा आत्म कल्याण होता रहे, तमोगुण रजोगुण दूर होता रहे, आध्यात्मिक विकास होता रहे और हम धीरे धीरे करके परमात्मा की ओर आगे बढ़ते रहे, इसलिए 100 वर्ष की आयु, उसका लक्ष्य की उद्देश्य की है, कोई जो है वो 100 वर्ष की आयु का निरंतर 100 वर्ष की आयु नहीं। इस प्रकार से कहते हैं 100 वर्ष की आयु रहे और निरंतर कर्म करते रहे। फिर देखिए उसमें कहते हैं कि कुर्बन ने कर्माणि विशेष, जीवन जीने की इच्छा करें लेकिन कर्म करते हुए जीवन जीने की इच्छा करें। ये इच्छा मन में ना आवे कि अब से जीवन हमारा जो है आराम से कटे, कुछ न करें और जिए हम 100 वर्ष। ये सात विरुद्ध बात है और समाज में एक धारणा ये भी फैली हुई है कि भाई हमें काम तो हमने बहुत किया 7 वर्ष तक, अब हम अवकाश प्राप्त कर लिए हैं इसलिए अब आराम से रहेंगे, अब कुछ करें धरेंगे नहीं, अब हमारे पास खाने पीने के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत हो गया, अपने खाएंगे मौज करेंगे, कुछ करना नहीं। तो हम ये जो है ये धारणा जो है सात विरुद्ध है। ये मान्यता व्यक्ति के मन की ही झूठी कल्पना है और वो व्यक्ति को अपने आप ठग रही है, इसी को माया कहते हैं। जब माया बुद्धि में छाई होती है तो इसी प्रकार की उल्टी सीधी बातें सुझाती है, गलत गलत बातें सुझाती रहती है। ये माया ही बुद्धि में बैठी हुई अज्ञानी अविद्या उसमें बैठे उसकी बुद्धि में, मनुष्य की बुद्धि में बैठा हुआ ये सुझाता रहता है कि अब हम आराम से जीवन समाप्त जिएंगे और अब हमें कुछ करना धरना नहीं। शास्त्र कहते हैं कि कर्म नहीं करना है ये तो मन में लाओ ही नहीं, निरंतर ये सोचो कि जब तक जीवन है तब तक कर्म है, क्योंकि ये कर्म जीवन का जो है प्रतीक है, जीवन का सूचक है। कर्म कर रहे हैं इसके माने हम जीवित हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं इसके माने हम शव जो होता कुछ नहीं करता, डेड बॉडी है वो क्या करता है, उसके द्वारा कोई कर्म नहीं। अगर हम कर्म नहीं करते इसके माने हम अपने आप को मृत्यु की ओर लिए जा रहे हैं। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम कुछ न करें तो ठीक है, कुछ न करना लक्ष्य जो है और स्थित जो है उसका नाम है मृत्यु। आप अपने आप मृत्यु की कामना कर रहे हैं, कर्म करने की इच्छा रखते हैं तो इसके माने है आप कर्म जो जीवन का चिन्ह है, इसके माने आप जीवन जीने की जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कर्म करते हुए जीवन और जीवन तत्व जहां से प्राप्त होता है आत्मा परमात्मा, उसकी तरफ व्यक्ति कर्म करते हुए आगे बढ़ सकता है। कर्म का त्याग करता है अकर्मण बनता है तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि कर्म करते हुए ही जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अब कर्म किस प्रकार के कर्म कहें, अब वो चार वर्ण चार आश्रम है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है। हर आयु में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म है। बाल्यावस्था में जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में लोग दौड़ो, बार बार दौड़ो, रोज सुबह शाम दौड़ो, पढ़ो, पढ़ पढ़ करके आओ, याद करो, लिखो, अभ्यास करो, यही सब उसका कर्तव्य कर्म है, यही बाल्यावस्था में। जब तक यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरी न हो जाए तब तक लगे रहो उसी में, दौड़ते रहो, यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य कर्म है। इसी प्रकार से विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति जो हो किसी व्यापार धंधे में प्रोफेशन में लगा, व्यवसाय में लगा, अब उस व्यवसाय में लगा रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे व्यवसाय में, परिवार का भी पालन करे, परिवार भी बनावे, व्यवसाय भी करे, अब इसी में लगा रहे। ये आयु का जो दूसरा काल है उसके कारण दूसरे प्रकार के व्यवसाय परिवार बस चक्र में लगा रहे। इसी प्रकार से फिर तीसरे में जब इसके यहाँ से ये दूसरे आयु समाप्त हो गई, अब थर्ड एज में आ गया, फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज, थर्ड एज मन तृतीय चरण जब जीवन का आ गया, तब भी को फिर अहंकार और स्वार्थ पूर्ण कर्म छोड़ करके लोक कल्याण के कार्यों में लगना चाहिए और उससे ही उसके उत्साह में लगना चाहिए। जितने उत्साह में उसने विद्या अध्ययन किया, जितने उत्साह से उसने अपना व्यवसाय किया, उतने ही उत्साह से अहंकार और स्वार्थ छोड़ करके लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए, यही भगवान की सेवा है। ये तीसरी आयु पर कर्तव्य करें। चौथी आयु में फिर व्यक्ति पहुंचा तो उस समय फिर कर्मों में करता था और भोगता था सब छोड़ दे, वो उस समय सदा ही परमात्म भाव में स्थित रहे और उस स्थिति में रहते हुए जो कुछ भी उसके द्वारा कर्म हो वो सहज भाव से कर्म होते रहें, उसको ऐसा लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ संसार में कहीं कोई भोग हो ही नहीं रहा हूं। कर्ता भोक्ता भाव बिल्कुल न रहे, परमात्मा में ही सदा रहे और उसके द्वारा जो भी कर्म हो तो इस प्रकार से हो जैसे कि फव्वारे से अपने आप पानी निकल करके चारों तरफ फैलता है अपने अंदर। इस प्रकार चौथी अवस्था में पहुंच करके व्यक्ति इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, उसके अंदर परमात्मा चेतना और शक्ति इतनी ज्यादा उसके भीतर भर जाएगी कि उसके दबाव में प्रेशर से उसके द्वारा जो कर्म होंगे वो सहज भाव से कर्म होंगे और लोक कल्याण का कार्य अपने आप होता रहेगा और वो ये लगेगा कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, तब भी लोक कल्याण का कार्य चलता ही चलता रहेगा। जो स्वाध्याय मंडल में आते होंगे जानते होंगे कि उसमें जीवन ज्योति के अंतिम अध्याय में तीन प्रकार के व्यक्तियों का विभाजन स्वामी जी ने किया। एक तो है लेबरर, दूसरे हैं वर्कर और तीसरे हैं मैन ऑफ फुलफिलमेंट, कृतकृत्य व्यक्ति। वो आत्मज्ञानी हैं, परमात्म भाव में मुक्त रहने वाले, जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर से उत्पन्न होकर के कर्म योग हो, कर्म उनके द्वारा भी होता है, लेकिन उनका कर्म उनके आनंद का, आनंद की अभिव्यक्ति मात्र है। उनका आनंद ही प्रकट होकर के कर्म के रूप में प्रकट होता है। न उनके कर्म के लिए उन्हें कोई फल चाहिए और न उनके कर्म करने में कोई प्रयास होता है और न उनके कर्म में कोई कर्ता भाव होता है। इस प्रकार से उनका कर्म का ये उच्च रूप कर्म का ये है जो मुक्त पुरुषों का कर्म है, इस प्रकार से होता है। ये व्यक्ति के कर्म के द्वारा व्यक्ति कैसे कैसे विकास करते हुए अंत में कहां पर किस स्थिति पर पहुंच जाता है, वो इस श्लोक से देखेंगे। यही तात्पर्य भाव इस श्लोक में है। इस श्लोक का पूरा अर्थ पिछले श्लोक के साथ ही लगता है। इसमें जैसे कहते हैं एवं त्वयि, एवं माने इस प्रकार से, तो एवं माने जो इस प्रकार है उसका माने ये है कि पिछले श्लोक में जो ऋषि ने बताया ये है कि हमें कर्म इस प्रकार से करना चाहिए, विषयों का भोग ऐसे भोगना चाहिए कि अनासक्त भाव से करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था मात्र था, मन उन आसक्त न हो। कसत्व धनम, ये किसका धन है, किस प्रकार का जो भाव है वो रखते हुए फिर सारे जीवन कर्म करते रहना चाहिए, किस प्रकार की स्थिति जो हो उसके साथ जोड़ते हैं, तब वो व्यक्ति का निष्काम कर्म योग की रूपरेखा पूरी बनती है। और ये ऋषि कहते हैं कि देखो ये मत समझना, अरे संसार में बहुत से संत हैं, बहुत से महात्मा, बहुत से संप्रदाय हैं, इसलिए हमको ये कठिन लगता है, जो हमें आसान बताएगा वो हम कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि भूल जाओ इस प्रकार की बातें, ये है कि ना अन्यथा एति अस्ति, जो आत्मा रक्षण शास्त्र में बताए गए हैं, चाहे इस उपनिषद में हो, चाहे अन्य उपनिषदों में हो, चाहे गीता में हो, चाहे कहीं भी हो, उन लक्षणों के, आत्मा के लक्षणों को जब उसके ऊपर घटित करके देखेंगे तो वो लक्षण उसमें मिलेंगे। यदि वो लक्षण उसमें नहीं, उस प्रकाश में नहीं मिल रहे हैं, तो उस प्रकाश को आप आत्मा क्यों माने कर रहे हो? फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है? अरे कुछ भी हो, लेकिन जब आत्मा के लक्षण उसमें नहीं मिल रहे हैं तब जबरदस्ती आत्मा क्यों मान रहे हो? इस प्रकार की भ्रांतियां भी आती हैं जीवन में, उनको सबको इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि जब तक कि शास्त्र को हम नहीं देखते तो हमारा जो इस प्रकार का अनुभव है, जो हमारे अंदर प्रकाश आप दिखाई दी, वो अनुभव तो है, लेकिन वो अनुभव शास्त्र सम्मत है या नहीं है ये भी देखना पड़ता है। शास्त्र सम्मत अनुभव होना चाहिए आत्मज्ञान का। वैसे तो अनुभव अपने स्थान में जैसा अनुभव है तैसा अनुभव है, अनुभव तो होने के लिए व्यक्ति को अनुभव तो अपने है, दुख का भी अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है, अनुभव तो सभी प्रकार के, शांति का, अशांति का, घृणा का, द्वेष का, क्रोध का, अगर कोई किसी को क्रोध आता है तो क्रोध का अनुभव नहीं होता, क्रोध का अनुभव होता है, अनुभव तो सब होते ही होते हैं, सारी जिंदगी अनुभव ही अनुभव है। लेकिन अनुभव के माने आत्मानुभव कब है, जब आत्मा के लक्षण होंगे तब आत्मानुभव होगा, कि बिना आत्मा के लक्षण हुए वो अनुभव अपने आप उसी को, हर किसी अनुभव को आत्मज्ञान का अनुभव मान लेंगे। इसलिए हर अनुभव को आत्मज्ञान का अनुभव नहीं मान सकते। वो अनुभव जो कि शास्त्र को, जहां पर शास्त्र ने कहा हो कि आत्मज्ञान का लक्षण ये है, आत्मा का स्वरूप ये है, उस अनुभव के साथ जब ये अनुभव हमारा अनुभव हो तब वो अनुभव हमारा सार्थक अनुभव, यथार्थ अनुभव ही होगा हमारा, वही ज्ञान आत्मज्ञान वास्तव में नहीं तो नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में आचार्यों ने तीन प्रमाण माने हैं, शास्त्र प्रमाण, तर्क प्रमाण और अनुभव प्रमाण। शास्त्र प्रमाण से हम प्रारंभ करते हैं, शास्त्र प्रमाण हमारा प्रबल प्रमाण, शास्त्र प्रमाण सबसे आगे आगे शास्त्र चलता है, उसके पीछे पीछे तर्क चलता है, शास्त्र अनुगामी तर्क चलेगा, तर्क के द्वारा भी वही बात सिद्ध होनी चाहिए, दो बात, और फिर तर्क के बाद में अनुभव भी तद्रूप आना चाहिए। जो शास्त्र कहता है और जो तर्क रहा है वैसा ही जब हमारा अनुभव हो तब वो अनुभव सार्थक अनुभव है, और वही अनुभव हमारे लिए कल्याणकारी और वही हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्र अनुभव उसके लिए न कोई तर्क है न कोई शास्त्र प्रमाण है, तो वो निराधार हमारा अनुभव है, उस अनुभव को हम कोई प्रामाणिक अनुभव नहीं मानते। इस बात को ध्यान में रखकर के आगे की बात आत्मज्ञान की बात आने वाली है कल, उसके लिए भूमिका के रूप में इतनी बात है। और सावधानी पूर्वक समझेंगे शास्त्र क्या कहते हैं हमारे आत्मज्ञान के विषय में, परमात्म ज्ञान के विषय में, उसको ठीक ठीक समझने की कोशिश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।